समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शिपाली।
हेलो आकर्षिता एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आर डियर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in alleged excise policy scam.
हरियाणा में एक ही चरण में और जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है।
National Investigation Agency conducts raids at several locations in Punjab in connection with attack on Indian High Commission in Canada.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।
हैवी रेन डिस्ट्रप्ट्स नॉर्मल लाइफ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। IMD वॉर्न्स मोर इंटेंस रेनफॉल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज।
और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन 21 सितम्बर को क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबान करेंगे।
And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we'll talk about adulteration of food or contamination of food materials and make our listeners aware on this matter. Now, dear listeners, people's love of sweets and guilty feelings about overindulgence are pretty universal. And Akashita, I think is baat par to hum sabhi agree
karenge.
Also, festivities are just around the corner and we could not be more excited because this is the time when families and friends bond over delicious meals.
भारत में मिठाइयों की एक समृद्ध परंपरा रही है और कई संस्कृतियों में इनका बहुत महत्व है, जैसे होली में गुजिया, छठ में ठेकुआ, गणेश चतुर्थी में मोदक और ईद में सेवइयों के बिना हमारा त्योहार अधूरा है। मिठाइयां खुशी, उत्सव, शुभ संकेत और समृद्धि का प्रतीक हैं। हम में से कई लोग खाने से पहले, खाने के दौरान और खाने के बाद भी मिठाइयाँ खाते हैं, तो यूं कहें कि हर खुशी में मिठाइयाँ तो जरूरी है शिपाली।
एब्सोल्युटली आकर्षिता। नीडलेस टू से एवरी फेस्टिवल इज इनकम्प्लीट विदाउट ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड मिठाइज दैट आर एंजॉयड एंड बिंज्ड ऑन। वी हैव ऑल बीन गिल्टी ऑफ ओवर ईटिंग मिठाई एट सम पॉइंट और द अदर, बी इट काजू की बर्फी, पतीसा एंड सोन पापड़ी और मोतीचूर एंड बेसन के लड्डू। थैंक्स टू दिस लव फॉर मिठाइज, shops around the country are packed with a wide variety of sweets. But have you ever wondered how these shops are able to meet the increasing demand of these mithais? Have you thought of the ingredients that go into a bulk of the sweets you buy?
लेकिन क्या आपको पता है कि जो आप लाल, पीली, हरी मिठाइयाँ खाते हैं उनमें मिलावट भी हो सकती है? इन मिलावटों से मिठाइयों की गुणवत्ता से काफी समझौता किया जाता है, विशेष रूप से दूध से बनी मिठाइयों में। चूंकि त्योहारों के दौरान मिठाइयां सबसे अधिक पसंद की जाने वाली खाद्य सामग्री होती हैं, इसलिए मिलावटखोर जानबूझकर उनमें ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, है ना शिफाली?
जी आकर्षिता, और इसीलिए द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एडल्टरेटेड स्वीट्स, savories and dairy products during the festive season. It also requested them to conduct frequent enforcement and surveillance drives during the festive season to prevent such malpractices.
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने एक पत्र में कहा कि त्योहारों के मौसम में मिठाइयों, नमकीन, दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे घी, खोया और पनीर की मांग बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग के कारण इन उत्पादों में मिलावट बढ़ जाती है। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी और बार बार निरीक्षण सहित अन्य निवारक उपायों से मिलावट पर प्रभावी रूप से अंकुश लगा सकते हैं। ना शिफाली, हम देखते हैं कि जब त्योहार आता है तो कितनी रंग बिरंगी हमको मिठाइयां मिलती है, लाल, पीली, हरी, नीली। और आपने अक्सर देखा होगा दिवाली में वो जो हम छोटे छोटे उसको क्या बोलते हैं कि वो कभी पक्षी बना होता है, कभी मोर बना होता है, कभी कोई हाथी घोड़ा होता है, वो कई कलर्स में आते हैं और हम उनको खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कितनी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जो उसमें रंग होते हैं, जो उसमें केमिकल्स होते हैं, हो सकता है। तो कभी भी हमको फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है मिठाइयों को खरीदना चाहिए या खाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मिलावट है। क्योंकि जैसे जैसे त्योहार में मांगें बढ़ती हैं तो क्या करते हैं कि जो मिलावटखोर होते हैं उसमें कुछ सस्ते सामान डाल करके जो हमारे लिए काफी खतरा पैदा कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरा हो सकता है।
बिल्कुल,
इसलिए हम अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करते हैं कि कभी भी वो कोई भी सामान लें या मिठाइयों की दुकान से मिठाई लें तो एक बार उसे जांच परख लें।
I agree with you, and जैसा कि हम कह सकते हैं आकर्षिता, all that glitters is not gold. तो दिखने में भले ही वो बहुत ही आकर्षक लग रही हो, but we don't know what the quality is. तो one has to be careful, and इसके लिए बहुत सारे solutions निकाले गए हैं. The authority has suggested that to ensure these products are safe for consumption and comply with food product standards, the food safety on wheels units where available should be stationed in prominent markets and on the basis of specific intelligence input. Now, dear listeners, talking about adulteration, what is food adulteration? I'm sure our listeners have an idea about it, but even if you don't, let us make you aware. Food adulteration can be defined as the practice of adulterating food or contamination of food materials by adding a few substances which are collectively called adulterants.
मिलावट एक अवैध गतिविधि है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में कच्चे और अन्य सस्ते तत्वों को मिलाकर मात्रा बढ़ाई जाती है। मिलावटी खाद्य पदार्थ अत्यधिक विषाक्त होते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, जिनमें पोषण की कमी से होने वाली कुछ बीमारियां, किडनी संबंधी विकार और व्यक्ति के हृदय, गुर्दे और कई अंग जो प्रभावित होते हैं उनसे उसकी निष्क्रियता जो है उसमें शामिल है। शिफाली
जी,
तो इसीलिए हम अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके, जैसे हम घर पे गुजिया बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी नानी, दादी, मामी या मम्मी का हेल्प करें और थोड़ी घर से अगर आप थोड़ी भी मिठाइयां बनाते हैं तो वो ज्यादा आपकी सेहत के लिए जो है अच्छी है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मिठाइयों को घर पे बनाने का प्रचलन भी काफी कम होता जा रहा है और हम बाहर से ही बाहर की मिठाइयां खरीद के खा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा त्योहार में है ना, थोड़ा मजा भी आता है, खुद से बनाते हैं, खाते हैं, फिर इसलिए हम वो भी एंजॉय कर सकते हैं।
आई अग्री, बट लिसनर्स, वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी मेक आर ओन स्वीट्स, बट ऑल्सो जो हमारे दुकानदार हैं, जो हमें मिठाइयां बना रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी में दें। तो आई होप वील ऑल ट्राई टू स्टिक टू दिस प्रिंसिपल। ऑल्सो वाई डू दे डू दिस अडल्टरेशन, बिकॉज दे डू दिस टू मेक फूड आइटम्स मोर इकोनॉमिकल और टेक्निकल और गेट टेक्निकल बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज। Addition of these adulterants reduces the value of nutrients in food and also contaminates the food which is not fit for consumption. These adulterants can be available in all food products which we consume daily, including dairy products, cereals, pulses, grains, meat, vegetables, fruits, oils, beverages. So Akarshita, sirf mithaiyon mein hi nahi but bahut type ke hamare khan paan mein jo hai milavat aaj kal dekhi ja rahi
hai. Ji ji. Aur agar dekha jaye Shefali, to jo vikasshil deshon mein bhojan mein milavat karna wo bahut aam baat ho gayi hai, kyunki wahan pe jo hai na मांग बहुत ज्यादा रहती है, तो मांग को पूरी करने के लिए जो मिलावटखोर होते हैं वो कुछ भी सस्ता या कुछ भी ऐसा मिला करके, तो इसीलिए उदाहरण के लिए जैसे दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिलाकर उसे पतला कर दिया जाता है, वैसे ही ठोस पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए अक्सर उसमें स्टार्च पाउडर मिलाया जाता है। तो सबसे जो आम मिलावट, मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि फलों को तेजी से पकाने के लिए हम देखते हैं कि कार्बाइड का प्रयोग कर रहे हैं दुकानदार, या सड़े हुए फलों और सब्जियों को अच्छे फलों और सब्जियों के साथ मिला देते हैं। और कभी कभी होता है कि उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए जो दुकानदार होते हैं वो प्राकृतिक और रासायनिक रंगों को मिलाते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होता है और सेहत पे इसका बहुत ही जो है बेकार प्रभाव पड़ता है। और अनाज, दालों और अन्य फसलों में भी मिट्टी, कंकड़ या पत्थर या जो अच्छे से फिल्टर्ड ना किया हो, ऐसे अनाज जो है हमें मतलब लेने से बचना चाहिए। और उत्पाद का वजन या प्रकृति बढ़ाने के लिए अच्छे पदार्थों के साथ सस्ते और मिलावटी पदार्थों को मिलाना भी ऐसे प्रैक्टिसेस शामिल हैं इसमें। तो जहाँ तक हो सके हमें कुछ भी लेने से पहले ये देखना चाहिए कि वो क्या FSSAI द्वारा प्रमाणित है कि नहीं, क्या उन्होंने उसको अप्रूव किया है कि नहीं, या फिर हम थोड़ी सी उसकी खुद से ही गुणवत्ता जांच पर रखें।
Absolutely. So Akashita has given us a lot of ways in which this food adulteration is being practiced. Now let's try to figure out the reasons behind it. That why is it done and why does it happen so often? Well, it is practiced as a part of the business strategy for many. It may be an imitation of some other food substance. There is also lack of knowledge of proper food consumption. Or it is done to increase the quantity of food production and sales due to increased food demand for a rapidly growing population. Or it is done to make maximum profit from food items by fewer investments. But well, we can say that there is no profit at the cost of health, and I hope we are all careful this time. Also circling back to sweets and mithais, in milk and curd, the adulterant which is most commonly used is water or starch powder. Its harmful effects are stomach disorders. And in sugar, adulterant is chalk powder, washing soda, urea. All of these lead to stomach disorders and even kidney failure.
और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने और बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। और अब समय है अपनी क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
जी आकर्षिता, Leh Hill Council is mulling to increase the security measures of monasteries. Monasteries are treasures of living Buddhist heritage and are popular attractions for visiting tourists in Ladakh. Our Leh correspondent has filed this report.
Monasteries are facing security challenges with increase of arrival of visitors. To ensure safety of the monasteries, Chief Executive Councillor of LASDC Leh Tashi Gyaltsen convened a meeting regarding security challenges affecting monastery with a focus on enhancing safety means with heads of monasteries and Ladakh police. The meeting was focused on enhancing security measures around the monasteries. Officials discussed various strategies such as installation of improved CCTV cameras and better street lighting. To increase visibility and overall security, it is also decided to upgrade halogen lights. It is discussed about the issue with regard to the tourism management strategies for regulation of tourist entry and exit of the monasteries. In the meeting, Chief Executive Councillor Leh assured to upgrade CCTV network with advanced motion sensors and alarm feature to enhance protection, particularly during night time. This upgrade will be carried out in phase manner, beginning with an assessment and initial installation, followed by a review and subsequent enhancement based on initial results. The possibility of employing private security personnel under specific conditions was also considered as a means to further safeguard these sites. A detailed survey will be conducted to determine the precise requirement for CCTV and other security systems and ensure that authorities are committed to enhancing the safety and security of the monasteries and further encourage all local communities and monastery authority to stay vigilant. Yangchen Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान के तहत खतियान, जमीन संबंधी दस्तावेजों और नक्शा को अद्यतन करने का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के एक वर्ष में पूरा होने का अनुमान है। लगभग 45,000 गांव में सर्वे का काम शुरू हुआ है। सर्वे अभियान में शामिल होकर लोग भूमि संबंधी रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए बड़ी संख्या में अंचल कार्यालयों, राजस्व कार्यालयों पर पहुंच रहे हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
बिहार में जमीन एक ऐसा प्रमुख विषय है जिससे कहीं न कहीं सबका वास्ता पड़ता है। ऐसे में अब नए दस्तावेजों की बात हो रही है, लैंड रिकॉर्ड अपडेट करने की बात हो रही है। कागजात प्राप्त करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के कार्यालयों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं लोग जमीन संबंधी दस्तावेज जुटाने के लिए जमीन अभिलेखागारों के चक्कर काट रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह का कहना है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बड़ी संख्या में जमीन संबंधी दस्तावेज ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं और लोग इसे बिना परेशानी के प्राप्त कर सकते हैं।
ज्यादा सुविधा हो, लोगों को भाग दौड़ न करना पड़े, इसका एक ही तरीका है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। वर्तमान समय में राजस्व विभाग ने लगभग राजस्व से संबंधित 15 करोड़ पन्नों को स्कैन करा करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया है और बिहार राज्य के लगभग 35,000 गांव के कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है वो उसमें उपलब्ध। इसके अलावा जो जमाबंदी आज चल रही है उस पूरी की पूरी वो जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध।
विभाग के सचिव ने लोगों से दलालों और बिचौलियों के झांसा में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने लोगों को गुमराह करने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील की।
तो मैं बार बार लोगों से अपील करूंगा कि आप किसी बिचौलिए के चक्कर में या किसी अन्यथा व्यक्ति के बहकावे में आने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और जो दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध है उनको डाउनलोड करके प्रिंट करें और प्रिंट करके लगाएं। उसको कहीं से सत्यापित कराने की कोई आवश्यकता नहीं।
राज्य में इतने बड़े पैमाने पर चल रहे भूमि सर्वेक्षण का अभियान किसी भागीरथ प्रयास से कम नहीं है। आने वाले समय में इसके कई लाभ देखने को मिलेंगे। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हुए इस वार्षिक सर्वेक्षण में शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों का मूल्यांकन किया गया। इस सर्वे में अलग अलग श्रेणियों में रायबरेली और फिरोजाबाद को पहला स्थान मिला।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में फिरोजाबाद को पहला स्थान मिला है। फिरोजाबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही कूड़ा प्रबंधन की बेहतर प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया गया। नगर निगम समेत अन्य इकाइयों ने व्यापक दृष्टिकोण से प्रयास किए जिसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। इससे वायु प्रदूषण में बीते 5 वर्ष में 40% से अधिक की कमी आई है। इसके अलावा 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल करने वाले रायबरेली को सर्वे में 200 अंकों में 195.5 अंक मिले हैं। रायबरेली जिले के वायु प्रदूषण में बीते 2 वर्षों में 35% तक सुधार आया है। शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सामान्य से अधिक धूल थी। नगर पालिका की ओर से इसे हटाने के लिए सप्ताह में 3 दिन शहर की सड़कों पर खास वाहन चलते हैं जो 40 से 50 टन धूल एकत्र करते हैं। नगर पालिका पानी के छिड़काव के साथ ही सप्ताह में 1 दिन शहर की सड़कों की धुलाई कराती है। इससे वाहनों के धुओं के फैलाव पर नियंत्रण लगता है। रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि नगर निगम समेत अन्य विभागों के समन्वय से कई काम कराए गए हैं।
जो कार्यवाही है निरंतर की जा रही है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत और नगर पालिका एवं अन्य विभागों के समन्वय से इस कार्य को कराया गया है। प्रमुख रूप से इसमें पटरियों से संबंधित जो हमारी सड़कों की रिपेयर से संबंधित कार्य हैं वो हुए हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन लगाई गई थी और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्प्रिंकलर मशीन का भी उपयोग हुआ था। ट्रैफिक व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल की भी व्यवस्था की गई थी। इन सभी एफर्ट्स का परिणाम है जिसको देखने को मिला है कि हम लोगों को प्रथम स्थान का।
रायबरेली और फिरोजाबाद में औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ ही हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधरोपण पर खास ध्यान दिया गया है। कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था के साथ ही लोगों की सहभागिता ने वायु गुणवत्ता को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। परिक्रमा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह और फिरोजाबाद से लियाकत अली के साथ ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
एंड नाउ वी विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
Today we bring you the story of a hero from Bengal. It was on this day in 1929, this great son of India, Jatindranath Das, made the supreme sacrifice for the freedom of the country at a young age of 25 years. Fondly called Jatin Das, he challenged the might of the British in his own unique way. Jatin Das was born on 27th October 1904 at Calcutta.
The devoted freedom fighter joined the Anushilan Samiti in Bengal at a young age. Later on, he teamed up with Bhagat Singh and his comrades in the Hindustan Socialist Republic Association. Jatin Das also participated in the non-cooperation movement when he was 17 years old. He was a brilliant student but chose to dedicate his life to the freedom movement.
The revolutionary freedom fighter could not see his jailed countrymen subjected to deplorable conditions by the British. Determined to seek better treatment of the Indian prisoners, he went on to a 63-day long hunger strike in Lahore jail, which ultimately cost his own life. His sacrifice had the desired impact in terms of the jail authorities agreeing to improve conditions for political prisoners. He was arrested by the British on June 14, 1929, in connection with the Lahore conspiracy case, which relates to the killing of the British police officer John Saunders by the revolutionaries.
Jatin Das suffered numerous hardships during his hunger strike. He was brutally beaten up, and efforts to force feed him damaged his lungs. After his death, his body was taken to Bengal. In Calcutta, Subhash Chandra Bose received his coffin at the Howrah railway station. Over 7 lakh people attended Jatin Das's funeral procession in the city. Subhash Chandra Bose called him the young Dadichi of the nation, the ancient Indian sage who also sacrificed his life for noble cause.
It was on this day in 1948 the Operation Polo was launched by the Indian Army to integrate the Hyderabad state into the territory of India. By 1948, most of the princely states had acceded to India, but the state of Hyderabad had chosen to join neither Pakistan nor India. The then Indian Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, requested the Nizam to join India, but he refused. The Nizam initially approached the British government with the proposal to designate Hyderabad as a constitutional monarchy within the Commonwealth of Nations. The proposal was rejected by the last Viceroy of India, Lord Louis Mountbatten.
For many years, the Nizam was facing popular resistance led by the Arya Samaj. The State People's Congress, under the leadership of Swami Ramanand Tirth, demanding the integration of Hyderabad with India. Under the Nizam, an exploitative agricultural structure had come to be established in Hyderabad. 40% of the land was either directly owned by the Nizam or given by him to the elites in the form of jagirs, special tenures. By the 1940s, a movement of resistance was taking shape among the peasants against the Nizam and his policies, and it reached its zenith by 1946.
On September 13, 1948, Indian forces entered the state at 4 a.m. under the Operation Polo. At 5 p.m. on 17 September 1948, the Nizam announced a ceasefire. Subsequently, he signed an instrument of accession joining India.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हाल में संपन्न पैरालंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। श्री मोदी ने पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति खिलाड़ियों का दृष्टिकोण हर किसी के लिए एक प्रेरणा है।
And Akarshita, Minister of State for Youth Affairs and Sports, Raksha Nikhil Khadse, also felicitated the para-athletes and said that their achievements have inspired the youth. In an exclusive interview with Akashwani News, Paralympics double gold medalist Sumit Antil said that it took years of hard work and dedication to achieve success on the biggest stage. Paralympics gold medalist in the men's club throw F51 event, Dharambir, told that winning a gold medal for India has been a dream come true for him. Talking to Akashwani News, badminton women's singles SF6 bronze medalist Nitya Sree Shivan thanked people across the country for their support throughout the games. And in business news today, India's equity benchmark indices Sensex and Nifty settled marginally lower today. At close, the Sensex dropped 72 points at 82,891 and the NSE Nifty was down 32 points at 25,356. Both the indices logged losses around 0.1%. In the global crude market, Brent crude was trading 0.8%, up at $72.61 per barrel, and WTI crude gained more than 1% to trade at $69.78 per barrel when the reports last came in. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 73,420 rupees for 10 grams, silver 999, fine is trading at 87,670 per 1 kilogram when reports last came in.
और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अंजान की पुण्यतिथि है। इनका वास्तविक नाम लालजी पांडे था। अंजान के लिखे हुए गीत आज भी लोगों की जुबा पर चढ़े हुए हैं। खाई के पान बनारस वाला, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना और रोते हुए आते हैं सब, जैसे ना जाने कितने ही सदाबहार गीत अंजान ने लिखे और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छुआ। अंजान ने अपनी करियर की शुरुआत वर्ष 1953 में अभिनेता प्रेमनाथ की फिल्म गोलकुंडा का कैदी से की थी। अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके गीत काफी लोकप्रियता हासिल की और कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अंजान के गीतों को नई पहचान मिली। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
उठाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। उठाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, इधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे।
And dear listeners, today is the death anniversary of Sayyed Sajjad Zahir, an Indian Urdu writer and radical revolutionary. He was a part of the Progressive Writers Movement. He also helped to organize the Indian People's Theatre Association, IPTA. Zahir started his literary career with a collection of short stories, Angare, in 1932. It had stories by Sajjad Zahir, Ahmed Ali, Rashid Jahan and Muhammad Uz-Zafar. In 1935, he wrote a novel called London Ki Ek Raat based on his experience of London. He also wrote Roshnai, a history-cum-memoir of the early days of the progressive movement. In addition, he also served as the editor of several papers and magazines throughout his career. Also, dear listeners, today is the death anniversary of Keshav Rao Datte, an Indian film actor who worked in both silent and sound movies. He acted in V. Shantaram's Dr. Kotnis Ki Amar Kahani, Jhanak Jhanak Payal Baje, Nav Rang and Geet Gaye Pahadon Ne. Let's listen to a song from a movie that he directed, Bhakti Chamala.
आज भारत की किराना घरानी की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे की जयंती है। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाना उनका सपना था। प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत के विषय पर संगीत पढ़ाती रहीं और व्याख्यान प्रदर्शन करती रहीं और लिखती रहीं। उनके नाम 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड भी है। किराना घराने की प्रभा अत्रे को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
जाबू मैं सारी रे ना बलमा, जाबू मैं सारी रे ना बलमा, जाबू मैं सारी रे ना बलमा, जाबू मैं सारी रे, जाबू मैं सारी रे ना बलमा, जाबू मैं सारी रे ना बलमा, रसिया मन लागना।
जी आकर्षिता, एंड शी हैड एक्सेप्शनल कमांड ओवर वेरियस म्यूजिकल जॉनरा सच एज ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, नाट्य संगीत एंड भजन।
आज फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्मदिन है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेश से की थी। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।